विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण परिप्रेक्ष्य राज्य प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु संबंधी गतिविधियों के लिए भुगतान करता है। राज्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारणों और प्रभावों का जवाब देने के उद्देश्य से कई गतिविधियों प्राकृतिक संसाधन और जलवायु गतिविधियों के लिए भुगतान करता है। ये गतिविधियाँ इस्तेमाल के लिए उपलब्ध पानी की मात्रा को बढ़ाने, मछली और वन्य जीवों को लाभ पहुँचाने के लिए ज़मीन का संरक्षण करने, राज्य और स्थानीय पार्कों में मनोरंजन के अवसरों को बढ़ाने और अन्य उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकार की एजेंसियाँ प्राकृतिक संसाधन और जलवायु संबंधी गतिविधियाँ करती हैं। अन्य मामलों में राज्य स्थानीय सरकारों, गैर लाभकारी संगठनों और व्यवसायों को समान गतिविधियों का समर्थन करने के लिए अनुदान और ऋण प्रदान करता है। राज्य प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु संबंधी गतिविधियों के लिए विभिन्न तरीकों से भुगतान करता है। कभी कभी राज्य इसके पास पहले से मौजूद धनराशि से प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु संबंधी गतिविधियों के लिए अग्रिम भुगतान करता है। अन्य मामलों में राज्य बॉन्ड्स का इस्तेमाल करके इन गतिविधियों के लिए भुगतान करता है। बॉन्ड्स एक ऐसा तरीका है जिससे राज्य पैसा उधार लेता है और फिर समय के साथ साथ पैसा और ब्याज को चुकाता है। बॉन्ड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस गाइड में आगे दिए गए शीर्षक राज्य बॉन्ड की समीक्षा देखें। पिछले दशक में राज्य ने प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु संबंधी गतिविधियों पर प्रत्येक साल सालाना औसतन लगभग $13 बिलियन खर्च किए हैं। इस राशि का लगभग 15% बॉन्ड से प्राप्त हुआ है। राज्य के पास अभी भी प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु बॉन्ड से कुछ $1 बिलियन बचे हुए हैं जिन्हें अभी तक विशिष्ट गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया गया है। स्थानीय और संघीय सरकारें भी इसी तरह की गतिविधियों के लिए भुगतान करती हैं। राज्य के निधिकरण के अलावा अन्य संस्थाएं भी प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु संबंधी गतिविधियों के लिए भुगतान करती हैं। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें अपनी भूमिकाओं के हिस्से के रूप में स्थानीय उपयोगिताओं के रूप में पानी और ऊर्जा के बुनियादी ढांचे के लिए भुगतान करती हैं। स्थानीय सरकारें जैसे कि शहर और काउंटियां स्थानीय पार्कों के लिए भी भुगतान करती हैं। संघीय सरकार विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु संबंधी गतिविधियों के लिए भी भुगतान करती है। उदाहरण के लिए संघीय सरकार स्थानीय पेयजल प्रणालियों को बेहतर बनाने और ऊर्जा की बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है। प्रस्ताव प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु संबंधी गतिविधियों के लिए नया बॉन्ड। प्रस्ताव 4 राज्यों को प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु संबंधी गतिविधियों के लिए $10 बिलियन का एक बॉन्ड बेचने की अनुमति देता है। बॉन्ड की अधिकांश धनराशि का इस्तेमाल स्थानीय सरकारें मूल अमेरिकी जनजातियों, गैर लाभकारी संगठनों और व्यवसायों को ऋण और अनुदान देने के लिए करती हैं। बॉन्ड की कुछ धनराशि राज्य द्वारा संचालित गतिविधियों पर खर्च करने के लिए राज्य एजेंसियों के लिए भी उपलब्ध होगी। निधिकरण से विभिन्न गतिविधियों के लिए भुगतान किया जाएगा। सूखा, बाढ़ और जल आपूर्ति $3.8 बिलियन। इस धनराशि का लगभग आधा हिस्सा लोगों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध पानी की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाने संबंधी गतिविधियों के लिए होगा। $1.9 बिलियन इसमें पानी का भंडारण करना शामिल होगा ताकि भविष्य में सूखे के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सके, साथ ही साथ प्रदूषित पानी को साफ करना ताकि इसे पीने के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। धनराशि का इस्तेमाल बाढ़ के जोखिम को कम करने में मदद करने के लिए भी किया जाएगा, जैसे कि बांधों की मरम्मत करना और तूफानी पानी को इकट्ठा करना और उसका पुनः इस्तेमाल करना। $1.1 बिलियन बाकी की धनराशि का इस्तेमाल विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाएगा, जैसे की नदियों और झीलों को बहाल करना, वन स्वास्थ्य और जंगल की आग की रोकथाम $1.5 बिलियन। यह सारी धनराशि जंगलों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और गंभीर और विनाशकारी जंगल की आग के जोखिम को कम करने वाली गतिविधियों का समर्थन करेगी। इसमें जंगलों में उन पेड़ों को छोटा करना होगा जो बहुत अधिक बड़े हो गए हैं और लोगों के रहने के स्थान के आसपास की वनस्पति को साफ करना भी शामिल होगा। धनराशि का इस्तेमाल अन्य गतिविधियों के लिए किया जाएगा, जैसे कि घर के मालिकों को उनकी संपत्तियों को जंगल की आग से नुकसान के प्रति अधिक प्रतिरोधक बनाने में मदद करना, समुद्र स्तर में वृद्धि और तटीय क्षेत्र $1.2 बिलियन। इस धनराशि के अधिकांश हिस्से से तटीय क्षेत्रों को बहाल करने और उन्हें समुद्र के बढ़ते हुए स्तर के प्रभावों से बचाने के की गतिविधियों के लिए भुगतान किया जाएगा। $890 मिलियन इसमें आर्द्र भूमियों को बहाल करना शामिल हो सकता है ताकि वे समुद्र के बढ़ते स्तर के लिए बफर्स के रूप में काम कर सकें। बाकी की धनराशि का इस्तेमाल समुद्री आवासों को बेहतर बनाने और मछलियों और अन्य समुद्री वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए किया जाएगा। $310 मिलियन जमीन संरक्षण और आवास बहाली $1.2 बिलियन, इस धनराशि का इस्तेमाल मछलियों और वन्य जीवों के लाभ के लिए ज़मीन की रक्षा करने और उसे बहाल करने के लिए किया जाएगा। उदाहरण के लिए यह अलग रखने के लिए ज़मीन खरीदने में सहायता कर सकता है ताकि इसे विकसित ना किया जाए। ऊर्जा का बुनियादी ढांचा $850 मिलियन, इस धनराशि का आधे से अधिक हिस्सा कैलिफोर्निया के तट पर पवन टर्बाइनों के विकास में सहायता करेगा। $475 मिलियन बाकी की धनराशि के अधिकांश भाग से बिजली को लंबी दूरियों तक ले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भुगतान किया जाएगा। $325 मिलियन बाकी की धनराशि की बड़ी बैटरियां बनाने की परियोजनाओं के लिए भुगतान किया जाएगा जो बिजली को तब संग्रहित करती हैं जब इसकी आवश्यकता होती है। $50 मिलियन $700 मिलियन इस धनराशि का बड़ा हिस्सा विभिन्न गतिविधियों का समर्थन करेगा जो पार्कों में मनोरंजक अवसरों का विस्तार करती हैं या पार्कों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करती हैं। $300 मिलियन इन गतिविधियों में नई पगडंडियां और पार्किंग क्षेत्र जोड़ना शामिल हो सकता है। इस धनराशि का कुछ हिस्सा स्थानीय समुदायों को नए पार्क बनाने या मौजूदा पार्कों का नवीनीकरण करने के लिए अनुदान प्रदान करेगा। $200 मिलियन इस धनराशि का बाकी हिस्सा राज्य पार्कों की मरम्मत और प्रकृति के बारे में शिक्षा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। $200 मिलियन अत्यधिक गर्मी $450 मिलियन इस धनराशि के अधिकांश हिस्से से समुदायों को अत्यधिक गर्मी से बचाने पर केंद्रित गतिविधियों के लिए भुगतान किया जाएगा। $200 मिलियन इन गतिविधियों में पेड़ और हरित क्षेत्र जोड़ना शामिल हो सकता है। धनराशि लोगों को लू की लहरों, हीट वेव या आपदाओं के दौरान जाने के लिए स्थानों का भी समर्थन करेगी। $100 मिलियन बाकी की धनराशि स्थानीय समुदायों को पर्यावरणीय लाभ पहुंचाने वाली गतिविधियों का संचालन करने के लिए अनुदान प्रदान करेगी, जैसे वायु प्रदूषण को कम करना। $150 मिलियन खेत और कृषि $300 मिलियन इस धनराशि का अधिकांश हिस्सा उन गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने, वायु प्रदूषण को कम करने और कम पानी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। $105 मिलियन इस धनराशि से सामुदायिक बगीचों और किसानों के बाजारों का समर्थन भी किया जाएगा, जैसे छायादार छतरियां खरीदकर। $60 मिलियन बाकी की धनराशि कई अन्य गतिविधियों में इस्तेमाल की जाएगी, जैसे कि खेतीहर मजदूरों के परिवहन के लिए वैन खरीदना और खेती की जमीन का संरक्षण करना। धनराशि के इस्तेमाल के लिए अन्य आवश्यकताएं स्थापित करता है। प्रस्ताव 4 के अनुसार बॉन्ड की धनराशि का इस्तेमाल कुछ खास तरीकों से किया जाना आवश्यक बनाता है। उदाहरण के लिए बॉन्ड की धनराशि का कम से कम 40% उन गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाना जरूरी है जो सीधे तौर पर उन समुदायों को लाभ पहुंचाती है जिनकी आय कम है या जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। प्रस्ताव 4 के अनुसार बॉन्ड की धनराशि के खर्च के बारे में नियमित सार्वजनिक रिपोर्ट देने की भी आवश्यकता है। राजकोषीय प्रभाव बॉन्ड की वापसी अदायगी के लिए राज्य की लागतों में 40 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से लगभग $400 मिलियन की वृद्धि। बॉन्ड को चुकाने की अनुमति लागत 40 वर्ष की अवधि में लगभग $400 मिलियन वार्षिक होगी। भुगतान राज्य सामान्य कोष से किया जाएगा। सामान्य कोष वह खाता है जिसका इस्तेमाल राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जेलों सहित अधिकांश सार्वजनिक सेवाओं के भुगतान के लिए करता है। यह राज्य के कुल सामान्य कोष बजट के 1% के आधे से भी कम होगा, क्योंकि राज्य को उधार ली गई धनराशि का ब्याज देना पड़ता है। इसलिए बॉन्ड की कुल लागत राज्य द्वारा इसके पास पहले से ही मौजूद धनराशि के साथ भुगतान करने की तुलना में लगभग 10% अधिक मुद्रास्फीति समायोजन के बाद होगी। प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु संबंधी गतिविधियों के लिए स्थानीय लागतों में कमी होने की संभावना राज्य बॉन्ड निधि की उपलब्धता से स्थानीय सरकारों पर विभिन्न राजकोषीय प्रभाव पड़ सकते हैं। कुछ मामलों में अतिरिक्त राज्य निधिकरण स्थानीय सरकार की धनराशि की जगह ले सकता है जो अन्यथा किसी परियोजना के लिए भुगतान करने के लिए आवश्यक होगी। उदाहरण के लिए इसमें बॉन्ड निधि का इस्तेमाल किसी आवश्यक जल उपचार सुविधा का समर्थन करने में मदद करने के लिए करना शामिल हो सकता है, जिसके लिए स्थानीय सरकार को अन्यथा स्वयं निधि देने की आवश्यकता होनी थी। हालांकि अन्य मामलों में राज्य निधि की उपलब्धता स्थानीय सरकारों को बड़ी परियोजनाओं के निर्माण के लिए अधिक धनराशि खर्च करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जितना वे अन्यथा खर्च नहीं करती। उदाहरण के लिए इसमें स्थानीय पार्क में अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ना शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर प्रस्ताव 4 से स्थानीय सरकारों को बचत होने की संभावना है। इन बचतों की राशि अनिश्चित है, लेकिन अगले कुछ दशकों में औसतन सालाना $10 मिलियन हो सकती है। अगर निधियां आपदाओं को रोकती हैं तो संभावित राज्य और स्थानीय बचत। जहां तक बॉन्ड निधियों के परिणाम स्वरूप ऐसी गतिविधियां पूरी की जाती हैं जो आपदाओं से होने वाले जोखिम या क्षति की मात्रा को कम करती हैं, तो इससे उन घटनाओं का जवाब देने और उनसे उबरने के लिए राज्य और स्थानीय लागत में कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए, तटबंध में सुधार करने से होने वाली बाढ़ की मात्रा कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त जंगल में पेड़ों को छांटने से जंगल की आग की गंभीरता कम हो सकती है। ऐसी संभावित बचतों की मात्रा अनिश्चित है। मुख्य रूप से इस विधेयक का समर्थन या विरोध करने के लिए गठित समितियों की सूची के लिए sos.caeg.gov/caal-acccesr.res/measurec.on-tribute-contact@measurec.on-tribute-contact पर जाएं। समिति के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं तक पहुंचने के लिए fppc.caeg.gov/transpareny/top-contribute-ors.html पर जाएं।